अरुणिमा ने धीरे से आस्तिक से अलग होते हुए उसे देखा। वो सच में आस्तिक को जीवन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि आस्तिक उस पर यकीन नहीं करेगा और उसकी बहन के होने वाले पति के बारे में गलत शब्द बोलने पर उसको ही सजा देगा। अरुणिमा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और कहा, मुझे कमरे में जाना है, कुछ काम याद आ गया। उसके बाद अरुणिमा एक मिनट और वहां नहीं रुकती है और सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा देती है, लेकिन आस्तिक उसे हैरानी से जाता हुआ देखता रह जाता है। जीवन ने भी ये सारा मामला देखा तो उसे हैरानी हुई कि अरुणिमा ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। जीवन ने इसी बात को अपनी जीत समझ ली। अरुणिमा के जाने के बाद आस्तिक ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी प्यास बुझ गई हो तो बाहर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और प्रणाली भी तुम्हें ढूंढ रही है। जीवन हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी राजा साहब, मैं बस अभी ये पानी की बोतल रखकर आता हूँ, आप आगे चलिए। आस्तिक ने घूरती हुई नज़र से जीवन को देखा और उसके बाद वो किचन से चला गया। उसके जाते ही जीवन ने गहरी सांस ली और अब उसने सच में पानी पिया था, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा कि वो पकड़ा गया है और आस्तिक की सज़ा के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। जीवन किचन से निकलने के लिए अपने कदम आगे ही बढ़ाता है कि तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है। वो हैरानी से नीचे देखता है, तभी उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो अपने पंजों के बल नीचे बैठता है और ज़मीन पर पड़ी अरुणिमा की उस पायल को उठा लेता है जो अरुणिमा के किचन से भागते वक्त उसके पैरों से गिर गई थी। जीवन अपनी आंखों में वासना लिए उस पायल को देखता है और फिर उसे सूंघते हुए कहता है, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अब क्या बताऊँ मैं आपको, जब से मैंने आपको देखा है सिर्फ आप ही के बारे में सोचता हूँ। आपका वो छोटा सा मासूम चेहरा और वो खूबसूरत सा बदन मुझे रातों में सोने नहीं देता है। मैं हर रात आपको अपने सपने में देखता हूँ और हर दिन आपको पाने की उम्मीद करता हूँ। जीवन ये कहते हुए किसी साइको की तरह प्रतीत हो रहा था। तभी उसके जहन में आस्तिक का ख्याल आता है और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, आप कितनी नाजुक सी और भोली सी हैं भाभी जी, और वो आस्तिक आपके सामने एक मजबूत पहाड़ की तरह है, कैसे झेलती हैं आप हर रात उस आदमी को। पर आप फिक्र मत कीजिए भाभी जी, जल्द ही मैं आपको इस कैद से बाहर निकाल लूंगा। और उसके बाद ये कहते हुए जीवन एक शैतानी हंसी हंसने लगता है और अरुणिमा की उस पायल को चूमने लगता है। दूसरी तरफ अरुणिमा अपने कमरे में तकिया में मुंह छुपाकर रो रही थी। वो आज पूरे दिन हुई घटना के बारे में सोच रही थी। जीवन एक नंबर का पागल इंसान है। वो अरुणिमा को ऐसे देखता है जैसे कि उसने कपड़े ही नहीं पहने हैं। उसकी वो घिनौनी नजरें अरुणिमा अपने ऊपर महसूस करते ही घिन से भर जाती है। अरुणिमा सुबकते हुए कहती है, मैं क्या करूं माता रानी, कैसे इस दुविधा से निकलूं। वो आदमी कहीं से भी प्रणाली के लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन प्रणाली जिस तरीके से उसके साथ रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रणाली उससे बहुत प्यार करती है। अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो प्रणाली इसका जिम्मेदार मुझे ही मानेगी। वो वैसे भी मुझसे नफरत करती है और अब तो उसके नफरत का स्तर और बढ़ गया है। उसे लग रहा है कि मैं जीवन पर डोरे डाल रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। वो आदमी तो मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में कर भी क्या सकती हूँ। अगर मैं राजा साहब से इस बारे में बात करूंगी तो कहीं वो मुझे ही गलत ना समझ ले, पर अपने बारे में सोचकर मैं प्रणाली की जिंदगी तो खराब नहीं होने दे सकती ना। हो सकता है कि ये जीवन मेरे बारे में जैसा भी हो लेकिन प्रणाली से सच में ही प्यार करता हो। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, वो प्रणाली से कैसे प्यार कर सकता है। अगर कोई इंसान किसी एक इंसान से प्यार करता है तो वो दूसरे की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता है, और इसकी नज़रें तो वासनाओं से भरी हुई हैं। पर इस बारे में किसी से कुछ कहने का फायदा भी तो नहीं है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, और राजा साहब, उन्होंने तो मुझे अब तक कोई सज़ा भी नहीं दी है। शायद वो अब मुझे कोई सज़ा ना दे अगर मैं उन्हें गुस्सा ना दिलाऊं तो, लेकिन अगर इस बात को सुनते ही उन्हें गुस्सा आ गया और वो फिर से मुझे सज़ा देने लग गए तो मैं क्या ही कर लूंगी। अरुणिमा रो रही थी, लेकिन फिर उसने अपने आंसू साफ किया और एक विश्वास के साथ कहा, परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मुझे इस जीवन से सावधान रहना होगा। जब भी वो इंसान मेरे आसपास आएगा मैं तुरंत राजा साहब के पास चली जाऊंगी, क्योंकि इतना तो मैंने उसकी आंखों में देखा ही है कि वो राजा साहब से डरता है, और अगर मैं राजा साहब के आसपास रही तो जीवन मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, यही सही रहेगा, मैं राजा साहब के आसपास ही रहूंगी। यही सोचते हुए अरुणिमा कमरे में राजा साहब के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे राजा साहब से बात करनी थी। आस्तिक ने वादा किया था कि रात में अरुणिमा की बात सुनेगा और उसकी एक इच्छा भी पूरी करेगा। रात के करीब 11 रहे थे। अरुणिमा अभी भी आस्तिक का इंतजार कर रही थी, लेकिन आस्तिक अभी तक कमरे में वापस नहीं आया था। जीवन और उसके परिवार वालों के जाने के बाद सारे नौकर और सेवकों को कपड़े और दान का सामान देने के बाद आस्तिक सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया था। वहां उसकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इतनी रात तक वो स्टडी रूम में बैठा हुआ है और अरुणिमा का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अरुणिमा अपने कमरे से निकलती है और स्टडी रूम में जाकर आस्तिक से बात करने का फैसला करती है, पर जैसे ही वो स्टडी रूम के पास पहुंचती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। स्टडी रूम के बाहर तो ताला लगा हुआ है, अगर आस्तिक यहाँ नहीं है तो फिर वो कहाँ गया? यही सोचते हुए अरुणिमा परेशान हो रही थी कि तभी उसके जहन में पियानो वाला कमरा आता है। अरुणिमा जल्दी से पियानो वाले कमरे में जाती है और वहां आस्तिक को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी सोच के परे आस्तिक इस कमरे में भी नहीं था, ये कमरा भी पूरा खाली था। अरुणिमा हैरान रह जाती है और सोचती है, ये राजा साहब अचानक कहाँ चले गए हैं? कहीं वो मुझसे किया हुआ वादा तो नहीं भूल गए? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज रात मेरी बात सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो राजा साहब का कहीं आता पता ही नहीं चल रहा है। तभी अचानक से अरुणिमा के जहन में आस्तिक की माँ का कमरा आता है। वो सोचती है कि आस्तिक शायद अपनी माँ के कमरे में गया होगा, वैसे भी आज उसकी माँ का जन्मदिन है, ऐसे में उसका अपनी माँ के साथ होना स्वाभाविक है। अरुणिमा तेज कदमों से आस्तिक की माँ के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अरुणिमा देखती है कि ये कमरा बाहर से खुला हुआ है, मतलब अंदर कोई है जिसने अंदर से कमरे को बंद किया हुआ है। अरुणिमा कमरे को खोलने की कोशिश करती है और उसे दो तीन बार अपने हाथों से बजाकर भी खोलने की कोशिश करती है। अरुणिमा की इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार कमरा खुलता है और अपने सामने आस्तिक को देखकर अरुणिमा एकदम से हैरान हो जाती है।